Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Akhidanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Srishti ke kan kan mein anusyut nirakar paramatma aur usi nirakar paramatma ke साकार रूप में उपस्थित श्रोता भाइयों और बहनों, कल हमने देखा यमराज और नचिकेता दोनों का संवाद, तीसरा वरदान कि जिसमें नचिकेता ने पूछा था मरने के बाद जीवात्मा रहता है या नहीं, इस विषय में बहुत सारे संदेह हैं, कृपा करके यह स्पष्ट करें। यमराज ने प्रलोभन बहुत सारे दिए, नचिकेता अपनी बात के ऊपर अड़ी रहा। नचिकेता ने तो यहां तक कह दिया, तवैव वाहाः तव नृत्य गीते, आपके वाहन, आपके गीत, आपके नृत्य, आपकी जितनी संपत्ति आप मुझे देना चाहते हैं, कृपा करके आपके पास ही रखिए, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो बस जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका ही उत्तर चाहिए। यमराज प्रसन्न हुए और यमराज सबसे पहले जो लोग मोह के अंदर फंसे हुए हैं उनकी दुर्दशा कैसी रहती है उसका वर्णन किया। उसके बाद कल हमने देखा कि जो कठोपनिषद का विषय है आत्मतत्व या परमात्म तत्व, उसका श्रवण मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहा श्रवणाया भी बहुभिरियो न लभ्य, किसी को यह सुनने को मिलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो विषय है वह विषय बहुत दुर्गम है, स्थूल बुद्धि से हम समझ नहीं पाएंगे। इसका जो विषय है उसमें कोई साकार की बात नहीं है, साकार की बात होती तो बहुत सरल था। जैसे मान लीजिए रामायण में अगर करूं तो होल इकट्ठा हो जाएगा, क्यों? भगवान राम की बात है, सीता मैया की बात है और हमारे अंदर संस्कार पड़े हुए हैं और हम अंदर धन्यता अनुभव कर रहे हैं कि हम अवतार का श्रवण कर रहे हैं। वह सरल है क्योंकि उसमें ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं है। लेकिन वेदांत में तो जो आपकी अपेक्षा है उससे अलग ही बात आएगी। आपने मान लिया कि परमात्मा साकार वाला है, वेदांत कहेगा साकार वाला तो है लेकिन वह उपाधि सहित है, वास्तव में तो निराकार है। और फिर आगे जाके वेदांत ये बताएगा साकार निराकार से भी परे है। अब हमारी बुद्धि वहां पहुंच नहीं पाती है इसलिए हमें यह वेदांत सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता। फिर भी कुछ लोग भाग्यशाली है कि वह वेदांत या अपना आपा अपना स्वरूप सुनने के लिए भाग्यशाली होते हैं। उनके लिए कहा शुण्वन्तः अपि बहवः यम न विदुः, सुनते हुए भी कई लोग ऐसे हैं कि वह समझ नहीं पाते साकार है या निराकार है, कुछ एक बताओ ना ठीक से, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, ऐसा नहीं, कुछ एक ठीक से बताओ। लेकिन परमात्मा हमारी बुद्धि में वैसे बैठने वाला नहीं है। इसलिए सुनते तो है लेकिन पल्ले नहीं पड़ रहा है। सुनवंतः अपि बहवः यम न विदुः, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जो जो सुन के आश्चर्यचकित हो जाता है। वक्ता भी आश्चर्यचकित है क्योंकि वक्ता ऐसे तत्व की बात कर रहा है जो मन बुद्धि वाणी से परे है फिर भी शब्द का प्रयोग करेगा। ये कैसी बात है, शब्द का प्रयोग किया और फिर सारे शब्दों को समेटकर वापस ले लिया, कह दिया अशब्द है। सब आलंबन पहले दिए, बाद में आलंबन खिसका दिए। इसलिए ऐसा अगर वक्ता है, वक्ता भी आश्चर्यमय है, सुनने वाला श्रोता भी आश्चर्यमय है। सुनता ही जा रहा है, सुनता ही जा रहा है, सुनता ही जा रहा है, फिर भी उसे तृप्ति नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वह अपने आप की बात है। शास्त्र कहता है कि आप पूर्ण आनंद स्वरूप हो, अंदर अच्छा लगता है, बुदबुदी होती है, लेकिन अनुभव तो यह कहता है आनंद की कहां बात कर रहे हैं स्वामी जी, सुबह से शाम तक दौड़ धूप कर रहे हैं, दुख ही दुख है, फिर भी अंदर अच्छा लगता है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम सीढ़ियम, गाड़ी में घर से आके यहां लगाते हैं, आनंद अनुभव कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पता है ये तो दुख वाला संसार है। उतना होते हुए भी यह श्रोता सुनने के लिए आ जाता है क्योंकि उसे पता है एक यह ही तत्व ऐसा है जो मुझे संसार सागर से पार करा सकता है। इसलिए इतना सुनते हुए भी सुनने की इच्छा हो रही है, तृप्ति ही नहीं हो रही है, वैसा श्रोता भी आश्चर्यमय है। अभी अभी यहां से सबकी स्तुति हुई, आदि शंकराचार्य की जय, प्रेमपुरी जी महाराज की जय, संतों की जय। मैं और एक जोड़ना चाहता हूं, सब श्रोता की भी जय। क्यों? क्यों? क्योंकि श्रोता ऐसे तत्व को सुन रहा है जो शब्द से भी परे है फिर भी सुन रहा है, वह श्रोता भी आश्चर्यमय है। इतना कहने के बाद आज कुछ और मंत्रों के ऊपर हम विचार करेंगे। द्वितीय वल्ली में यमराज कह रहे हैं, न नरेणा वरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिंत्यमानः, अनन्य प्रोक्ते गतिरस्त्र नास्ति अणियान ह्य तर्क्यम अनुप्रमाणात्। कहते हैं कि यह जो आत्मतत्व है वह आत्मतत्व किसी अवर नरेण प्रोक्त, अवरेण नरेण प्रोक्त मतलब किसी अल्पज्ञ व्यक्ति से अगर कहा गया तो समझ में नहीं आएगा। मतलब जो व्यक्ति कर्म और उपासना के अंदर है, मतलब उनकी निष्ठा कर्म और उपासना में है, अगर वह तत्व की बात करेगा तो वो सामने वाले को सुनने वाले को पल्ले नहीं पड़ेगा। क्यों? उसमें उसकी निष्ठा नहीं है। जिसकी जिसमें निष्ठा होगी अगर वह उसका प्रतिपादन करेगा तो वह ठोस बात करेगा, जोर से बात करेगा, तभी सामने वाले सुनने वाले के दिमाग में वह बात बैठेगी। लेकिन जिसकी निष्ठा मान लीजिए जप के अंदर है और एक व्यक्ति वो महात्मा के पास आया और महात्मा जी ये हमारे लिए समस्या है, अगर उस व्यक्ति की जप में निष्ठा होगी तो वो क्या कहेगा, इतना जप कर दो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन जो तत्वज्ञ है, शास्त्र का श्रवण जिसने ब्रह्मनिष्ठ गुरु से किया हुआ है, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ दोनों से जिसने किया हुआ है, वह गुरु ऐसा उपदेश देगा उनको कि दुख तू महसूस तो कर रहा है, अनुभव कर रहा है, लेकिन वास्तव में तेरे स्वरूप में दुख है ही नहीं। ये वास्तविकता है, हमने मान रखा है दुख है इसलिए है। इसलिए जिसकी कर्म में आसक्ति है या कर्मनिष्ठ है, उपासना निष्ठ है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर यह बात कही गई तो यह आत्मतत्व समझ में आने वाला नहीं है। उतना ही नहीं, ये आत्मतत्व की प्राप्ति के लिए या जानने के लिए दो कृपाएं भी आवश्यक है। एक है ईश्वर कृपा, दूसरी है गुरु की कृपा। गुरु की कृपा के अंदर शास्त्र कृपा भी समाविष्ट हो जाती है। ईश्वर कृपा क्या है? हम सबको ईश्वर कृपा है ही। ये मानव देह मिलना, यह है ईश्वर कृपा। ईश्वर की कृपा का अर्थ है ये मानव देह की प्राप्ति। हम सबको प्राप्त हो ही चुका है, लेकिन मानव देह प्राप्त होते हुए भी अगर जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में हम अगर असफल रहे, समझना हमने जन्म तो प्राप्त किया लेकिन हमने जन्म गवाया है। विषय भोग के लिए हमने पूरा जीवन समाप्त कर दिया। जो लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए वह हमने की नहीं। इसलिए मानव देह प्राप्त होना यह ईश्वर की कृपा है। वरना जरा सोचिए, हम कुत्ते बिल्ली होकर किसी के घर में मर्सिडीज गाड़ी के अंदर घूमते होंगे। मनुष्य है, मर्सिडीज गाड़ी के अंदर घूमते तो है, लेकिन साथ में यह तत्वज्ञान सुनने को भी हमको मिलता है। इसलिए मानव देह की प्राप्ति वह है ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा। क्या है गुरु की कृपा? गुरु आपको पढ़ाएगा। मान लीजिए कोई गुरु ऐसा है कि मैं सिर्फ उपदेश नहीं दूंगा, मौन बनकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, तो वैसा जो गुरु है जो पढ़ाएगा नहीं, वह भी हमारे लिए काम का नहीं, वह श्रेष्ठ हो सकता है। गुरु का अर्थ क्या है? कि जो शास्त्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है और वह शास्त्र किसी को पढ़ाएगा, वह है गुरु की कृपा। मान लीजिए आप उसके पास एक प्रश्न लेके गए और गुरु कह रहा है कि मेरा तो 18 साल का मौन है, आपकी शंका का समाधान नहीं हो पाया। इसलिए गुरु की कृपा यह है कि वह आपको पढ़ाए, शास्त्र के जो रहस्य है वो आपके सामने खुला कर दे। यह है गुरु की कृपा। जिनके ऊपर यह कृपा नहीं है वह यह आत्मतत्व नहीं समझ सकता। उतना ही नहीं, वो सामने वाला गुरु के ऊपर हमारी गुरु बुद्धि भी होनी चाहिए, पूज्य बुद्धि होनी चाहिए। पूज्य बुद्धि नहीं होगी, गुरु बुद्धि नहीं होगी, फिर भी हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए योग वाशिष्ठ के अंदर शिखिध्वज और चुड़ाला, पति पत्नी दोनों, और चुड़ाला ज्ञानी थी, तत्व का उपदेश उसने अपने पति शिखिध्वज को किया, फिर भी शिखिध्वज ने जैसा तत्व का ज्ञान था वैसा ग्रहण नहीं किया। क्यों? ये तो मेरी पत्नी है, उसे क्या पता। पत्नी बुद्धि थी इसलिए ग्रहण नहीं किया। अगर पत्नी बुद्धि ना होती, गुरु बुद्धि की होती, पूज्य बुद्धि की होती, शिखी ध्वज को भी ज्ञान हो गया होता। इसलिए यह जो तत्व है, किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा या कर्म में जिसकी निष्ठा है, उपासना में जिसकी निष्ठा है, जिसके ऊपर ईश्वर कृपा गुरु कृपा नहीं है, जिसके ऊपर पूज्य बुद्धि नहीं है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर उपदेश भी हुआ, वह चित्त में बैठेगा नहीं। इसलिए यमराज कह रहे हैं न नरेण अवरेण प्रोक्त बहुधा चिंत्यमान। यह आत्मतत्व कैसा है? बहुधा चिंत्यमान, अनेक प्रकार से महात्मा लोग समझाते हैं, साकार से भी समझाते हैं, निराकार से भी समझाते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में संशय बैठ जाता है कि वह साकार है या निराकार है। निराकार हमारी बुद्धि की पकड़ में नहीं आता, साकार तो सरलता से आ जाता है, और जो सरलता से आ जाता है हम उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्यों? झंझट क्या क्यों करें निराकार को पकड़ने की? साकार अच्छा है, हमारा दुख है, कम से कम हम भगवान को कह तो सकते हैं, जो समस्या है भगवान के सामने व्यक्त कर सकते हैं। साकार अच्छा है, निराकार समझ में नहीं आ रहा है, बुद्धि की पकड़ में नहीं आ रहा है। इसलिए निराकार है या नहीं उस विषय में हमें संदेह हो जाता है। साकार तो हमारी आंख का विषय है, हम पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वास्तव में क्या है, साकार है या निराकार है, इस विषय में कई लोग संशय में पड़े होते हैं। द्वैतवादी है वह ऐसा कहेंगे कि साकार ही सच्चा है। क्यों? साकार के अंदर कम से कम भगवान के प्रति भाव तो रहता है, ये अनन्य भक्ति में, निराकार भक्ति में वहां तो दूसरा है ही नहीं, तो आप भक्ति किसकी करोगे? इस तरह से अगर उपदेश देने से वह द्वैतवादियों के द्वारा चित्त में ठीक से बैठ नहीं पाता कि भाई साकार सच्चा है निराकार सच्चा है। इसलिए जो व्यक्ति साकार निराकार की उलझन में रहता है, और अगर वह किसी को उपदेश करता है तो भी वह सामने वाले के दिमाग में ठीक से बैठेगा नहीं। इसलिए कहा बहुधा चिंत्यमान अनन्य प्रोक्ते गतिरस्त नात्रि, अनन्य प्रोक्ते गति ही अत्र न अस्ति, अनन्य प्रोक्ते। तो किसके द्वारा यह ठीक से पता चलता है? जिसकी बुद्धि में अन्य नहीं है। ऐसा कौन हो सकता है स्वामी जी? जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु है, जिसकी बुद्धि में सर्वत्र एक ही परमात्मा है, अन्य कुछ है ही नहीं, परमात्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं, ऐसी बुद्धि वाला अगर बयान करेगा तत्व का, तो सामने वाला सरलता से समझ जाएगा। एक ये अर्थ है। क्यों? क्योंकि उपदेश वह तत्व का दे रहा है, और जो तत्व है वह एक ही है, एक का अर्थ है अन्य नहीं। कुछ संप्रदाय वाले ऐसा मानते हैं कि अन्याश्रय नहीं करना चाहिए। अन्याश्रय मतलब जो हमारे इष्ट देवता है उसे छोड़कर किसी और इष्ट देवता को पकड़ना नहीं चाहिए, लेकिन वहां अर्थ एकदम अलग है। वो लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है उसको छोड़कर आप किसी अन्य देवता राम शंकर उसको मत पकड़ना। लेकिन वहां अर्थ ये है कि जगत को न पकड़ना, सिर्फ एकमात्र परमात्मा या ब्रह्म को पकड़ना, ऐसा उसका अर्थ है। लेकिन जो द्वैतवादी हो है ना, वह ऐसी ही बात करेगा। तो जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु है, जिसकी बुद्धि में अन्य कुछ है ही नहीं, इसलिए यहां का अनन्य, अगर वह बात करेगा तत्व की, तो शिष्य के दिमाग के अंदर ठीक ठाक बैठ जाएगा। हां, शिष्य अगर प्रश्न उपस्थित करेगा तो उस प्रश्न का समाधान भी प्राप्त होगा उसे। इसलिए यह आत्मतत्व को समझाने के लिए जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु है उसके पास ही जाना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, पता कैसे चले ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है? उसके ऊपर लेबल तो नहीं लगाया है? और अक्सर समाज में ऐसी इंप्रेशन होती है कि जितना उम्र वाला हो वह सबसे अच्छा गुरु, या तो जिसकी दाढ़ी लंबी हो वह बड़ा गुरु, या तो फिर जिसका पेट बहुत बड़ा हो बड़ा गुरु, या तो सिर्फ हिंदी में ही बात करता हो वो बड़ा गुरु। हमारे गुजरात में तो ऐसी बात है ही, गुजरात में अगर आप जाएंगे और हिंदी में बात करेंगे, ये महात्मा सबसे बड़े हैं। क्यों? वो हिंदी में बात करते हैं। अगर आप गुजराती में बात करोगे, ये तो अपने जैसे ही है, उसमें और हमें क्या फर्क है? तो सच्चा गुरु कौन, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु कौन, जिसकी निष्ठा सिर्फ ब्रह्म में ही है, जिसकी नित्य निरंतर स्थिति ब्रह्म में ही है, और उसने श्रवण किया है, कैसेट सुन के नहीं, सीडी सुन के नहीं, अपने सद्गुरु के द्वारा, परंपरा द्वारा यह श्रवण किया हुआ है। इसलिए जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जो कहेगा वह सामने वाले दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि वह परंपरा से जो उसने सुना हुआ है, और साथ में उसकी नित्य निरंतर स्थिति निष्ठा वह ब्रह्म में ही है। अगर वह व्यक्ति अगर कहेगा, अगर वह गुरु ये तत्व की बात करेगा, शिष्य की शंका का समाधान हो जाएगा। इसलिए कहा, अनन्य प्रोक्ते है गति ही अत्र न अस्ति। क्यों? क्योंकि यह आत्मा कैसा है? अणु प्रमाणात् अणियान अतर्क्यम। आत्मतत्व कैसा है? तो कहते हैं अणु से भी अणु है, अणु अणुत्तर अणुत्तम, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। ये आत्मतत्व कैसा है? अणु से भी अणु है। अणु से भी अणु माने अणु का भी एक परिमाण है, उससे भी सूक्ष्म है। कहने का तात्पर्य है यह आत्मा उससे भी सूक्ष्म है, और सूक्ष्म होने की वजह से वह तर्क से कभी भी जाना नहीं जा सकता। तो कैसे जाना जाएगा स्वामी जी? आप कह रहे हो तर्क से नहीं जाना जाएगा, तो क्या हमें तर्क नहीं करना चाहिए? तर्क तो करना चाहिए। श्रवण करने के बाद अगर मन में कुछ शंका उपस्थित हुई, मन में अगर कुछ तर्क उत्पन्न हुए, वह तर्क श्रुति अनुसार, शास्त्र अनुसार, शास्त्र अनुकूल होने चाहिए। जैसे कई लोग ऐसा तर्क करते हैं कि परमात्मा एक ही है और सब जगह है। बात सही है, तो इसका अर्थ यह हुआ तर्क करने वाला ये कहेगा कि एक ने खाया तो सबने खा लिया। दूसरा तर्क क्या होगा, एक मरा तो सब मर गए। या तो एक ने ब्याज के ऊपर पैसे लिए और वह चुका न सका तो सबकी हालत ऐसी हो जाएगी। यह कुतर्क है, तर्क नहीं है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान तो सब जगह है, परमात्मा तो सब जगह है, ब्रह्म तो सब जगह है, तो एक काम करिए ना आप लोग, आप रोटी की जगह पत्थर खा लो। या तो आपके कमरे में नीचे जाना है तो यहां से क्यों जा रहे हो, यहां से सीधा उतर जाओ नीचे। यह तर्क है, तर्क भी नहीं कह सकते, ये कुतर्क है। वैसे कुतर्कियों की तो कोई गति ही नहीं हो सकती। इसका अर्थ ये नहीं कि तर्क नहीं करना चाहिए, तर्क होना चाहिए, शास्त्र अनुकूल होना चाहिए। शंका और संदेह का निवारण के लिए तर्क करे वह ठीक है। देखिए भगवद गीता में अर्जुन संदेह शंका व्यक्त करता है, भगवान उसका समाधान करते जा रहा है। अर्जुन स्वयं कहता है कि मुझे इस बाबत में संशय है, कृपा करके आप मेरी शंका का समाधान करें। शंका तो होनी चाहिए, संदेह तो होना चाहिए, लेकिन वह निवारण के लिए होना चाहिए। जिसकी कोई अंत हो, मर्यादा हो, जिसका उत्तर प्राप्त हो सके, उस दृष्टिकोण से शंका होनी चाहिए। लेकिन अगर कुतर्क करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए यमराज ने कहा यह आत्मतत्व अतर्क्यम है, किसी तर्क के द्वारा जाना नहीं जाएगा। आजकल हम देखते हैं कि आत्मतत्व को भी बुद्धि के अंदर बिठाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह विषय जो है वो श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा का विषय इसीलिए है क्योंकि यह आत्मतत्व शब्द प्रमाण के द्वारा ही जाना जा सकता है, और शब्द जो है वह शास्त्र के रूप के अंदर है। तो शास्त्र के अंदर अगर श्रद्धा न हुई तो यह परमात्म तत्व हम नहीं जान पाएंगे। बुद्धिवाद बहुत है, श्रद्धावाद बहुत कम हो चुका है। इसलिए सुनते हुए भी क्यों ठीक से दिमाग में बैठता नहीं है, श्रद्धावाद कम होता जा रहा है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि कैसे श्रद्धा होए, आत्मतत्व तो दिखता नहीं है, अगर होता तो हम श्रद्धा करने को तैयार है। जैसे ये हार का इसका रंग ऑरेंज कलर का है, दिख रहा है, हम मानते हैं, और मैं कहूं आत्मा निराकार है, सर्वव्याप्त है, कैसे श्रद्धा होगी, नहीं हो सकती। लेकिन जरा सोचिए,